एवं तीनों ही अहम भक्ति सुखानुभिज्ञत्वेन वांछामि। कहते हैं कि मैं विमोक्ष चाहता हूं, यह कामना भी मेरे भीतर इसीलिए है कि मैं आपके भक्ति के सुख से अनभिज्ञ हूं। जो महत्पुरुष आपकी भक्ति में सराबोर रहते हैं, वास्तव में वे आनंद के समुद्र में मग्न रहते हैं। आपका अति अद्भुत और अत्यंत सुमंगल चरित गाते हैं और यही उनका आनंद है। कथयन पश्यमान नित्यम तुष्यं पिचर मन पिचर। भगवान कहते हैं कि जो महात्मा हैं वे सर्वदा मेरी चर्चा करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त सदा मुझमें चित्त आविष्ट रखते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, उनका प्राण मुझमें रहता है, उनकी इंद्रियां मुझमें लगी रहती हैं और परस्पर एक दूसरे को मेरे विषय में बोध देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, मेरी लीला कथा का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। कथयन तश्च माम नित्यम, वो मेरी ही बड़ाई करते रहते हैं, मेरा कथन करते रहते हैं और यही उनका तोष है, यही उनका रमण है। इतना उन्हें सुख मिलता है कि वे इसी में रमे रहते हैं, यही सबसे बड़ा सुख। इसी बात को श्री गजेंद्र जी यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान के जो एकांतिक भक्त होते हैं वे भगवान से कुछ भी नहीं चाहते। एकांतिनो जस्य न कंचनार्थम, जस्य एकांतिना कंचन अर्थम न वांछन्ति, कुछ भी अर्थ नहीं चाहते, कोई भी उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी एक ही इच्छा रहती है भगवान की लीलाओं का गान करना, श्रवण करना बस। और वे प्रपन्न होते हैं भगवान के, प्रपन्न का अर्थ सेवित वंता, भगवान के रूप गुण आदि की सेवा में लगे रहते हैं, उसका अनुभव करते रहते हैं, आविष्ट रहते हैं। तो पन्ना शब्द का यह अर्थ जो भगवान के रूप गुण आदि विशेषताओं पर ही रिझे हुए हैं और अपने जीवन का सर्वोपरि सुख मानते हैं भगवान की लीलाओं का गान, तो वे तो कुछ भी नहीं चाहते। इतना अपार सुख मिलता है कि उस सुख के आगे और सारे सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं। इस श्लोक में गजेंद्र जी कहे भगवान का चरित्र अति अद्भुत है और सुमंगल। क्यों भगवान के चरित्र की विशेषता है, क्या बात है, कौन है कि उनका चरित्र, उनकी लीला कथा या उनका नाम अति अद्भुत है और अत्यंत सुमंगल, इसी को कहने के लिए भगवान के अनेक विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। अत्यद्भुत सुमंगलत्व प्रदर्शनार्थम अक्षरत्रादिनी विशेषणानी, बस इतनी ही टीका है श्रीधर स्वामी, लेकिन पर्याप्त। अत्यद्भुत सुमंगलत्व प्रदर्शनार्थम अक्षरत्रादिनी विशेषणानी, भगवान की विशेषता बताई जा रही है इसके बाद वाले श्लोक में, तमक्षरम में। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म निवाति दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण नील। तम परम परेशम ईड स्तव में मैं परम पुरुष परम ईश्वर की स्तुति कर रहा हूं, गुण गा रहा हूं। इस प्रकार से इसका अन्वय है। कथम भूतम परेशम, वे भगवान कैसे हैं जिनकी आप स्तुति कर रहे हैं? तो पहली विशेषता बता रहे हैं अक्षरम। अक्षरम भगवान है, क्षर नहीं है। क्षर शब्द छीन होने के अर्थ में है। तो इस जगत में देवता या मनुष्य कोई भी हो, सबका शरीर छीन होता है, ज्ञान छीन होता है, धन कम हो जाता है, आयु छीन होती रहती है, अनेक प्रकार से दुख से वे विद्ध रहते हैं। तो जिसकी स्थिति परिवर्तनशील हो, क्षरणशील हो, उसे क्षर कहते हैं। और अक्षर का अर्थ है जो सदा एक रस रहता है, कुटस्थ अविकारी। तो भगवान का रूप या नाम गुण उनकी अनंत विशेषताएं या धाम उनके परिकर उनका समाज सब कुछ है। अक्षर है, अविनाशी, यह विशेषता है भगवान की, एक विशेषता। इसमें इस तरह से 11-12 विशेषता बता रहे हैं गजेंद्र जी। अक्षर भगवान ने गीता में इस विषय में प्रवचन किया है, कहते हैं जस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी अतीत हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी, मतलब इस प्राकृतिक जगत में, संसार में भी तथा शास्त्रों में, दोनों में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात। क्षर से भी अतीत है, अक्षर से भी अतीत है, इसलिए पुरुषोत्तम। अक्षर भी कई प्रकार के हैं। अक्षर जीव को भी अक्षर कहा जाता है और क्षर भी कहा जाता है इसको। इसके साथ ही साथ भगवान के अन्य भी प्रकाशन हैं, अन्य भी स्वरूप हैं, वे भी अक्षर हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनसे भी विलक्षण हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषेषु उत्तम। जैसे पुरुष का अर्थ है कारणोदकशायी पुरुष, शिरोदकशायी पुरुष, गर्भोदकशायी पुरुष, और भगवान के अन्य भी विविध अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण इन सब में उत्तम हैं, इसलिए इन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम। भगवान के किसी भी अवतार को पुरुष कहा जाता है। पुरुषोत्तम परम को अक्षर के साथ भी जोड़ सकते हैं, या परम को स्वतंत्र भी रख सकते हैं, या परम को परेशम के साथ भी जोड़ सकते हैं, यह अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। परम अक्षरम मतलब पुरुषोत्तम। अक्षर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान के समस्त गुणों को, उनके धन कृपा परिकर या स्वरूप आदि सबको पकड़ रहा है, और सबके विषय में कहा गया कि अक्षर। भगवान के धाम में कभी प्रलय नहीं होता है, कोई दुख नहीं है। भगवान का स्वरूप, उनका रूप सुंदर सदा एक रस रहता है, और इसी तरह उनकी कीर्ति, उनके परिकर सब कुछ। यह विशेषता अक्षर परम। परम का अर्थ है सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। हम जितने भी भगवत स्वरूप आदि की धारणा करते हैं, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है। परंतु यहां पर जो अर्थ है, परम का अर्थ है सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ, किसी भी विषय में, रूप में, गुण में, लीला में, दया में, धन में, सभी विषयों में जो परम टॉप पर, वे एक विशेषता है भगवान की। भगवान के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। न तत् समस्या भेदिकम कुतुम, इसीलिए उनको उनका नाम ही है परम श्रेष्ठ, परम। भगवान के साथ कोई कंपटीशन नहीं ले सकता है किसी भी विषय में। ऐसे कभी कभी ब्रज में राधा रानी या दूसरे सखा भगवान से कंपटीशन लेते हैं कि हम आपसे ज्यादा सुंदर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे सब निराश हो जाते हैं, वे ऐसे सुंदर। धन में, बल में, किसी भी विषय में भगवान सबसे श्रेष्ठ। परेशम, कंट्रोल करने वालों में भी वो सबसे श्रेष्ठ। परेशम का अर्थ है परम ईशम, परम ईश्वर, परम नियंता। इस विश्व में अनेक जीव हैं, जैसे देवता आदि, तो कुछ जीवों के कुछ कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, उनके नियामक दूसरे हैं, उनके नियामक दूसरे हैं, सबसे परम नियंता भगवान, इसलिए उनको परेशम या परमेश्वरम कहा जाता है। परेशम, तमक्षरम ब्रह्म, परम परेशम अव्यक्तम, भगवान व्यक्त नहीं है। व्यक्त का अर्थ यह होता है कि जब जीव है एक प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वही जीव जो प्राकृत वस्तु में जन्म लेता प्रकट होता है, तो इसको कहते हैं व्यक्तम या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त होता है। परंतु भगवान व्यक्त नहीं, भगवान है अपने स्वरूप में सदा रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान छिपे हैं किसी दूसरे रूप में और उनको शरीर प्राकृत दे दिया गया। प्राकृत शरीर जिसको है उसको व्यक्ति कहते हैं। विअक्ति शब्द है, विअक्ति व्यक्ति, अक्ति से अक्त शब्द है, कुछ रंगना, चित्र बनाना, तो अक्ति का अर्थ है प्राकृत करना, कुछ रूप देना, जैसे एक लकड़ी को गढ़ करके हम कोई फर्नीचर का रूप दे देते, इसको अभिव्यक्ति और व्यक्ति कहते हैं। तो भगवान इस तरह से कभी नहीं होते हैं, सदा से हैं। ऐसा नहीं कि प्राकृत वस्तुओं में हमें हम अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए उनका नाम ही है अव्यक्त। परंतु अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं समझना चाहिए। अव्यक्त का अर्थ है अपने पूर्ण स्पिरिचुअल आकार में भगवान। कहने का आशय यह है कि भगवान का रूप, उनका सिर, उनका हाथ, उनका पैर या उनका कुछ भी समाज प्रकृति का उत्पादन नहीं, स्वरूप भूत है और आध्यात्मिक, यह अव्यक्त का अर्थ। और ऐसे प्रभु आध्यात्मिक योग गम्य, आध्यात्मिक योग से प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक योगे न गम्यम प्राप्तव्यम, कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक योग में लगना चाहिए। तो आध्यात्मिक योग का क्या अर्थ है? योग का अर्थ तो साधना समझ लेना चाहिए, उपाय। परंतु अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म में दो शब्द हैं, अधि और आत्म। अधि का अर्थ होता है अधिकार, स्वरूप, और आत्मा का अर्थ है आत्मा। तो आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा से जो कभी पृथक नहीं किया जा सकता है, अधिकार पूर्वक जो आत्मा के साथ सटा हुआ है उसका स्वरूप ही है, उसको अध्यात्म कहते हैं। तो जीव के स्वरूप के अनुबंधी जो कर्तव्य है और उसके स्वरूप के अनुबंधी जो साधना है उसको आध्यात्मिक योग कहते हैं अर्थात भक्ति योग। भक्ति योग जीव का स्वरूप है और जो भी साधन है कर्म ज्ञान और जो कुछ वे सब जीव के स्वरूप नहीं। कोई जीव यदि भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो वो अपने स्वरूप के अनुकूल काम कर रहा है क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास। तो भक्ति योग उसके स्वरूप के अनुकूल साधना है और जो दूसरी साधनाएं हैं वो आध्यात्मिक योग नहीं। आत्मा के स्वरूप के साथ उसका कोई मेल नहीं। जैसे कोई व्यक्ति केवल यह विचार करता है कि मैं ब्रह्म हूं और भगवान के साथ कोई स्नेह नहीं प्रेम नहीं समर्पण नहीं सेवा नहीं तो ये उस स्वरूप के विरुद्ध जा रहा है। भगवान का नाम जपना भगवान का चिंतन करना उनकी सेवा करना श्रवण करना कीर्तन करना और विविध प्रकार से और भी भक्ति के अंगों का अनुशीलन करना यह आत्मा पर अधिक है। ये आत्मा का अपना स्वरूप है। अधिक अर्थ होता है अधिकार पूर्वक जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अधिकार का अर्थ होता है स्वरूप। जैसे अग्नि का अधिकार है जलाना दाह करना उस दाह को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान के प्रति अविच्छेद्य प्रेम अखंड प्रेम और निष्काम प्रेम यह आत्मा का स्वरूप है। आत्मा से इसको अलग किया नहीं जा सकता। भले कुछ काल के लिए वो प्रकाशित नहीं होता है परंतु उसको अलग नहीं किया जा सकता और उस स्वरूप के अनुकूल अनुबंधी जो भी साधना की जाती है उसको आध्यात्मिक योग कहा जाता है और भगवान आध्यात्मिक योग से प्राप्त होते हैं। हमारे बहुत से वैष्णव आचार्यों ने इसका अर्थ किया है अपनी टीकाओं में आध्यात्मिक योग। यह आध्यात्मिक योग का अर्थ ही नहीं समझना चाहिए जो भी मन में आए वो कुछ करो आंख बंद करके बैठो बस आध्यात्मिक योग हो गया। या कुछ लोग तो आध्यात्मिक का अर्थ करेंगे आत्मा माने देह और देह का योग करेंगे आसन आदि करेंगे तो भगवान मिल जाए। आत्मा का अर्थ मन भी होता है तो मन के मनोधर्म के अनुसार कुछ भी चिंतन करेंगे करेंगे बस साधना हो नहीं। आत्मा के स्वरूप के अनुकूल क्रिया को साधन को आध्यात्मिक योग अर्थात भक्ति योग इससे भगवान गम्यम प्राप्तव्यम प्राप्त होते हैं। भगवान को अव्यक्त कहा गया परमेश्वर अक्षर तो इससे यह आशंका बनती है कि भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन। सर्वदा उनको ये बताया जा रहा है कि माया से परे हैं और हम हैं माया में। हमारा मन हमारी इंद्रियां हमारा सब कुछ माया से विद्ध है। माया से विद्ध क्या है माया ही मूर्तिमान। तो बीच बीच में गजेंद्र जी बहुत सुंदर उक्ति बोले हैं कई बार बोले हैं भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं कैसे प्राप्त हो सकते हैं। आप कभी समय मिले तो गिन सकते हैं कितना बार वो कहते हैं प्राप्ति के विषय में। आगे भी अपने स्तोत्र का प्राय अंत करते हुए कहते हैं कि योगी लोग योग के द्वारा हृदय में जिनका साक्षात्कार करते योगेशम तम नतोस में हम उसमें योग रंधित कर मारो आगे वाले हैं। योग रंधित कर मारो हृदय योग विभावित योगिनो यम प्रपश्यंती योगेशम तम नपश्य और मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविता इत्यादि बहुत से ऐसे वाक्य बोले। उसी तरह का यह भी गुण है। यह भगवान का स्वभाव है। भगवान तप से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान ज्ञान से कर्म से और बहुत प्रकार के कर्मों से प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान अध्यात्म योग से प्राप्त होते हैं अर्थात भक्ति योग से प्राप्त होते हैं। यह भगवान की एक विशेषता है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, तो उसके हृदय में भगवान अपने आप को उदित करते हैं। निष्कर्म भाव न विवर्जितागम स्वयं प्रकाश है नमस्कारोम, वहां भी ये बात प्रकट हुई। निष्कर्म भावे न अभी आत्मतत्व, आत्मतत्व की भावना से जो विधि निषेध से परे हो गए हैं, उनके हृदय में भगवान का प्रकाशन अपने आप होता है। तो भगवान की स्वरताई, उनका अप्राकृतत्व और उनका सर्व वैलक्षण, ये सब वर्णन किया जा रहा है। लेकिन भगवान मिलते कैसे हैं, इस शब्द में इसका वर्णन किया गया। भगवान मिलते हैं भक्ति करने से, और विशेषता अन्य बता रहे हैं अतीन्द्रियम, अति इंद्रियम, अति का अर्थ पार, अतीत, जो इंद्रियों के अनुभव से, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियां उनको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि जीव की इंद्रियां प्रकृति के गुणों का उत्पादन, और भगवान है अप्राकृत, इसीलिए उनको अभक्षज कहा जाता है। अक्षज का अर्थ है इंद्रियज, और उसका अर्थ ज्ञानम, इंद्रियों के अनुभव को अक्षज कहा जाता है। अक्ष का अर्थ इंद्रिया, प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों का कुछ अपना अनुभव, देखने का अनुभव, सुनने का अनुभव, परंतु देखना सुनना या बोलना या मन में तर्क करना अनुमान करना इंद्रियों की केवल पहुंच प्राकृत पदार्थ तक है, और भगवान है अप्राकृत, तो कैसे इंद्रियां उनको जान सकती। भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान इंद्रियों पर बैठते हैं और उनको अप्राकृत बना देते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है, या भगवान के विषय में कोई बोल सकता है, सुन सकता है। भगवान कृपा करके भक्त के इंद्रियों को स्पिरिचुअल बनाते हैं, दिव्य बना देते हैं, तब पकड़ता है। सामान्यतः भगवान इंद्रियों के ज्ञान से परे, तो भगवान तो आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं। इस प्राकृत जगत में भी हम लोग देखते हैं कि एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं पकड़ पाती, प्राकृत जगत नहीं, और प्राकृत और प्राकृत का भेद तो बहुत, जैसे जिह्वा है, जिह्वा रस का अनुभव बता देती है कि इस दूध में शुगर है या नहीं है, या इस खीर में दूध पड़ा है कि कोई भूल से नमक डाल दिया, ये जीभ से पता चलता है। अगर आप आंख से लगाना चाहेंगे तो नहीं लगाएंगे। किसी मिस्त्री को भी कोई देखने के लिए कहे कि जरा देख कर बताइए कि दूध में चीनी पड़ा है कि नहीं, नहीं बता पाए। जब प्राकृत जगत में ही यह बात, या दूध को छू करके देखिए त्वग इंद्रिय से कि इसमें चीनी पड़ा है कि नहीं, तो क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। जिह्वा की पहुंच है रसानुभव तक, लेकिन त्वक की पहुंच नहीं है, या नासिका भी नहीं बता सकते है सुनकर कि पड़ा है कि नहीं पड़ा। जिह्वा से स्पर्श करने के बाद तब पता चलता है अरे इसमें बहुत ज्यादा चीनी पड़ गया है या नहीं पड़ा है, या नमक दाल में कितना पड़ा है नहीं पड़ा है। कई ऐसा अनुभव है जिसको जिह्वा बता सकती है, आंख नहीं बताएगी। और इसी तरह से कुछ इंद्रियां हैं जिनके अनुभव को जीव नहीं बता सकती। प्राकृत जगत में ही प्राकृत पदार्थ तक का अनुभव सभी इंद्रियां नहीं कर सकती। जैसे रस का अनुभव आंख नहीं कर सकती है, त्वग इंद्रिय नहीं कर सकती है, ये नासिका भी नहीं, कान भी नहीं, और आंख का अनुभव जीवा नहीं कर सकते। आंख बंद करके और जिह्वा पर कुछ रखिए और जिह्वा से पूछिए कि इसका रंग क्या है, इसका रूप क्या है, हरा है कि काला है कि धवल है, क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब इंद्रियां प्राकृत पदार्थों को ही नहीं पकड़ सकती हैं, तो प्रकृति से पार भगवान को कैसे पकड़ सकती हैं? ऐसा समझा जा सकता। आंख से रस का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। इस विषय में एक घटना घटी थी अब तो लौकिक बातें नहीं कहनी चाहिए लेकिन याद आ जाती है। रमाणी जी कहते हैं कि ऐसी बात कहनी चाहिए। एक बार हमारे घर में विवाह उत्सव था, किसी लड़की का विवाह था, तो भोजन बन रहा था, एक स्थान पर ही चावल का आटा रखा हुआ था, चावल पीस करके आटा कोई चीज बनाने के लिए, और वहीं पर बगल में नमक रखा हुआ था, सब्जी बन रही थी, तो जो मिस्त्री था वो नमक के बदले भूल करके वो आटा डाल रहा था, और दूसरा व्यक्ति वहीं पर था, तो डालने के बाद उसको शक हुआ कि कहीं हम ज्यादा न डाल दें, ठीक काम भर डाल दिया गया ना, तो एक व्यक्ति को वो दिया चखने के लिए सब्जी, जरा चख लीजिए और इसके बाद बताइए कि इसमें नमक ठीक पड़ा है कि नहीं, और वो देखा था कि नमक डाला, थोड़ा संकोच करके कम डाल रहा, तो वो चखा तो कहा कि हाँ थोड़ा और डाल दीजिए, वो तो आंख से देखा था कि नमक डाल रहे हैं, वो चौरस डाल रहा था, चावल का आटा डाल रहा था, लेकिन वो देखा था कि नमक उतना डाल दिया तो कुछ से कम जैसा इसको अनुभव, ऐसे भी कुछ नमक था ही नहीं उसमें तो कुछ ही नमक नहीं, लेकिन उतना डाला था इसलिए कहा कि थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा और डाले, तो और वो डाला तो फिर थोड़ा सा और फिर चप करके कर, लेकिन और डाला तो इसको विश्वास हो गया कि उतना नमक डाला गया तो हो सकता है हमारी जीवा खराब हो गई, तो वो कहा कि हाँ बस बस अब काफी हो गया, चौंक करके कहा अब काफी हो गया, और वो आटा तो नीचे बैठ करके जल गया, बाद में सारी सब्जी फेंकनी पड़ी, बरातियों के मुख में नहीं गई, तो आटा डालने से आटा जल गया और उसमें बहुत दूसरे तरह की गंध हो गई, तो सब लोग डांटने लगे कि इसमें नमक नहीं पड़ा है, नमक नहीं पड़ा है, और सब्जी ही बेकार हो गई है, नमक की बात तो दूर। तब ये जांच होने लगी कि कौन नमक डाला था, कौन नमक डाला था, मिस्त्री को लोग कहने कि नमक क्यों नहीं डाला, नमक क्यों नहीं डाला, तो वो कह रहा था कि अमुक व्यक्ति बैठा था, हम तो चखा करके कहे नमक डाले हैं, तो उसे पूछने लगे कि नमक पड़ा था, तो हाँ पड़ा था, इतना नमक डाला अब क्या कितने नमक डाले अंत में वो शोध किया गया तो पता चला कि नमक एक चुटकी भी नहीं डाला गया था और चावल का आटा डाल दिया गया, देखने में दोनों एक जैसा लगता, क्या इंद्रियां पकड़ेगी बेचारा, वो देख रहा था आंख से कि इतना नमक झोंका जा रहा है तो जरूर नमकीन हो गया इस तरह से घटना है। जब प्राकृत वस्तु को ही हम नहीं समझ सकते इन इंद्रियों से, तो प्रकृति से सर्वथा परे भगवान को क्या कोई इंद्रियों से समझेगा, तो भगवान अति इंद्रिय, इंद्रियों से अतीत परे अगोच, तो यह भी बहुत निराश करने वाली बात है कि जब भगवान अति इंद्रिय हैं और हम लोग किसी भी बात का अनुभव इंद्रिय द्वारा ही करेंगे, तब तो इस जीवन में भगवान का अनुभव होना बिल्कुल कठिन। परंतु आध्यात्मिक जीव गम्यम को यहाँ पर उठाकर लाना चाहिए। भक्ति करने से भगवान को जाना जा सकता है, भक्त की इंद्रियों में अलौकिक शक्ति आ जाती है। ये सब सिद्धांत है समझने, एक बात को लेकर के बस उसी को कहते रहे कि इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता, भगवान के विषय में बोला नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, और इसलिए कथा कहना भी बकवास। मान लीजिए कोई कहे, लेकिन दूसरे जगह कई बातें हैं जो इस बात का समर्थन करती हैं सिद्धांत का, कि भगवान का गुण वर्णन किया जा सकता है, भगवान का चिंतन किया जा सकता है, भगवान के विषय में सुना जा सकता है, यहां तक कि उनको आलिंगन में लिया जा सकता है, उनको झूला झुलाया जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है। पर किस उपाय से? आध्यात्मिक योग से, भक्ति योग से। अन्यथा वे तो आप इंद्रियों से परे। आज के युग में मनुष्य समाज में यह बहुत बड़ी कमी है कि वो शास्त्र के किसी एक वाक्य को लेकर के बस उसी को कहता रहता है और दूसरा विचार नहीं करता आगे पीछे क्या कहा गया। लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, एक बात सुने बस उसी को हुआ हुआ सियार जैसे बोलते रहते। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस प्रकार के विचार को अर्ध कुकुट न्याय कहा है। शारीरिक भाष्य में ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में ही लिखते कि जो लोग शास्त्र के एक उक्ति को ग्रहण करते हैं और अन्य उक्तियों को छोड़ देते हैं तो उनको अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक ठीक। तो अर्ध कुकुट न्याय का अर्थ है, कुकुट का अर्थ है मुर्गी या मुर्गा। एक व्यक्ति के घर में एक मुर्गी थी, तो मुर्गी अंडा देती थी और वो व्यक्ति अंडा बेचता था चाहे खाता था जो करे, पैसा कमाता था बेच करके। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मुर्गी का जो अगला हिस्सा है, मुख का साइज, मुख के तरफ का भाग है, बड़ा एक्सपेंसिव है, खर्चीला, रोज दाना डालना पड़ता है, और अंडा पिछले भाग से देती है तो पिछला भाग बहुत अच्छा है, कोई खर्च नहीं कराता है और अंडा देता रहता है, तो मुर्गी का पश्चात भाग बहुत अच्छा है, उपादेय है, और अगला बड़ा खर्चीला है, इसलिए उसको काट कर अलग कर देना चाहिए। जहां दाना खिलाना पड़ रहा है उस मुंह को काट करके अलग कर दूंगा तो खर्च भी बच जाएगा और अंडा आता रहेगा। और उसके मन में ये विचार आया और उसने मुर्गी के गर्दन को कतल कर, मुर्गी का गर्दन उतार दिया, तो उसका तो खर्चा तो बचा लेकिन अंडा आना भी बंद हो गया। उसी से मुर्गी तो गई, परलोक सुधार गई अब वो मरी। तो उसी तरह से जो लोग शास्त्र की एक बात को पढ़ लेता और सब जगह वही कहते हैं यह बात, उसके आगे पीछे जो कहा गया उसको नहीं ग्रहण करते। ये तो कहा गया है कि भगवान इंद्रियों से परे है, अप्राकृत है, उन तक मन नहीं पहुंच सकता, वाणी नहीं पहुंच सकते, और इंद्रियों की तो बात ही क्या। परंतु वही अगल बगल में लिखा गया है कि भगवान भक्ति के वश में है, भगवान नाम उच्चारण करने से सामने आ जाते हैं, वही लिखा गया है। और नाम उच्चारण कैसे करेंगे उसको कहा गया है कि जिह्वा से, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धे। और यहां तक कहा गया है कि भगवान की कोई व्यक्ति पूजा करता है अर्चा विग्रह के रूप में तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, ये बात कही गई। तो हम लोगों को अर्ध कुकुटी नहीं बनना चाहिए। हमने देखा है कुछ लोग भगवद गीता पढ़ते हैं तो वो क्या करेंगे, छठा अध्याय खूब पढ़ते जिसमें भगवान ध्यान के लिए कहे हैं कि आसन ऐसे लगाओ, ऐसे रीढ़ को सीधा करो, दोनों आंखों को नाक के अग्रभाग तक करो और चिंतन करो। और ये जब सुना अर्जुन ने तो अर्जुन कहते हैं ये तो बहुत कठिन है, मन को वश में करना आंधी को वश में करने के समान कठिन मैं मानता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक कहते हैं, असम स्वयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। हे महाबाहु अर्जुन, तुम कह रहे हो कि मन को वश में करना बड़ा कठिन है, असंशय इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक कह रहे हो, मन को वश में करना कठिन, पर अभ्यास से और वैराग्य से उसको वश में किया जाता है। लेकिन फिर भी अर्जुन उसको स्वीकार नहीं, भगवान कहते हैं और अंत में अर्जुन अपना सिर ऐसे हिला दिए कि ये सब तो बेकार बात है, कोई दूसरा उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भवतो यो माम समय युक्त तमो मत। समस्त योगियों में शिरोमणि योगी वह है जो अपने मन को मेरे सौंदर्य में मेरे रूप में लगा करके मेरा चिंतन करते हुए भजन करता है, समस्त योगियों में वही श्रेष्ठ। पर ये तब ये छठा अध्याय का सारा योग प्रकरण लिख पोत कर खत्म किया गया। भगवान का चिंतन करना है और जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं तो छठा अध्याय पढ़ पढ़ कर कितने लोग हिमालय चले जाते, वहीं ध्यान करेंगे, निरुपद्रव स्थान है, ये है वो है ऐसा है, और मन को बस में नहीं कर पाते हैं, उधर से जा करके और झमेला इकट्ठा करके आ जाते हैं। देखा गया शुरू में भावना होती है कि भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उधर जाकर के आश्रम खोल देते, जिस उपद्रव से जिस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए घर छोड़ के ध्यान करेंगे, और वही आश्रम में हल्ला हो रहा है, यह काम वह काम यह काम, और अब स्वामी जी को फोन करने से फुर्सत नहीं है, ध्यान करने चले गए। यही दशा होती, मन को बस में करना बड़ा कठिन है। मन बस में कैसे होगा, अभ्यास से, किस चीज का अभ्यास, भक्ति का अभ्यास। जैसे यहाँ पर कीर्तन होता है तो क्या इस समय मन को बस में करना बाकी रह जाता है, किसी का भी मन इधर उधर का चिंतन नहीं करता होगा, शरीर थिरकता है, बाहें ऊपर रहती हैं, जीवा से गाते हैं, अब इससे बड़ा योग क्या होगा बताइए, मन लग जाता है कि नहीं भगवान में, स्वाभाविक लग जाता है, इसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। अतीन्द्रियम, भगवान इंद्रियों से परे हैं, मतलब माया दूषित इंद्रियों से परे है, परंतु दिव्य इंद्रियों से वे साक्षात्कृत होते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला को पकड़ा जा सकता है। अतीन्द्रियम यह भगवान की दिव्य स्थिति का सूचक। अतीन्द्रियम शब्द से यह नहीं समझना चाहिए भगवान का रूप नहीं है, आंख नहीं पकड़ सकती है, जैसे मान लीजिए हमारी आंख है कुछ स्वर्गीय लोगों के दृश्य को नहीं देख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग नहीं है, हमारी आंखों की शक्ति नहीं है देखने की, हमारा कान कोई चीज न सुन पाए तो हम कहते हैं कि वहां शब्द है ही नहीं। तो किसी व्यक्ति के पास रेडियो है और रेडियो ऑन करके वो शब्द सुन रहा है, कहीं दूसरी जगह का शब्द आ रहा है, और हमारे पास रेडियो नहीं है और वह व्यक्ति कहे कि मैं तो सुन रहा हूं, ये कहता है नहीं शब्द है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो रेडियो है नहीं, वो सुन नहीं रहा है, दूसरा तो सुन रहा है। तो भगवान का रूप है, भले हम इन आंखों से न देख पाए, भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं, उनके शब्द हैं, उनके नुपुर की ध्वनि है, उनके बांसुरी का स्वर है, और उनका उनकी बोली तो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि मरता हुआ आदमी उसी समय जी कर जवान हो जाएगा, इतना सुंदर बोलते हैं। अगर विपरीत बोल दे तो तत्काल मर जाएगा आदमी वो बात सुनकर। रुक्मणी जी से भगवान ने कह दिया कि तुम दूसरे पुरुष से विवाह कर लो, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, न मेरा राज्य है न कुछ है, मैं समुद्र में किला बनाकर रहता हूं, बलवानों से द्वेष किया हूं, और वैसे मैं स्त्री के फेर में भी नहीं रहता हूं, कब छोड़ दूंगा कोई ठीक नहीं, इसलिए किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय से विवाह कर लो जिसे तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, घर गृहस्थी ठीक से चले। इतना सुनते हैं रुक्मिणी जी बेहोश होकर गिर पड़ी। तो भगवान के वाणी में हलाहल विष भी है अगर विपरीत बोल दे, उनकी बोली सुनकर के इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि उस समय जहर पीने पर भी उतना दुख नहीं होगा, लेकिन अनुकूल भाव से यदि बोल दे
तो कोटि कोटि अमृत भिक्षिका हो जाता है। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, तपस्या करके कर्दम जी बिल्कुल क्षीण हो गए थे, हड्डी मात्र रह गई थी, लेकिन जब भगवान बोले कुछ सुंदर शब्द में उनसे बात किया तो भगवान की बोली सुन करके बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो गए। बिल्कुल युवक 16 वर्ष के हो गए, सुंदर भगवान की बोली में अमृत। तो भगवान के शब्द हैं, भगवान जहां हैं वहां अपने परिकरों से खेल बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं तो कहते भगवान बोलते ही नहीं, तुम बोलते हो ये नहीं बोलते हैं ना। हम लोग रोज बोलते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, भगवान को सुनाते हैं, तो क्या कभी ये सोचते हैं कि भगवान भी बोलते हैं कि नहीं, कि हम ही सबसे बुलक्कड़ हो गए। भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके स्वर हैं, शब्द हैं, उनका रूप है बहुत सुंदर रूप, और उनके शरीर से दिव्य गंध है निकलता है। इसके साथ ही साथ भगवान का प्रसाद जिह्वा का विषय, भगवान खाते हैं और उनमें उनका लाला मिलता है, लाला खेला अधर रस, और भगवान का स्पर्श, भगवान सबसे अधिक सुखद वस्तु हैं, भक्त उनका स्पर्श करके निहाल हो जाते। तो भगवान का रूप, शब्द, स्पर्श, गंध और रस सब है, परंतु जीव की मायाबद्ध इंद्रिया उनको नहीं समझ पाती। पर शास्त्रों में भगवान के रूप, गुण, लीला, रस आदि की कथाएं दी गई हैं। इस भक्त ने ऐसे आस्वादन किया, इस भक्त ने ऐसे आस्वादन किया, और इसको सुन करके तब सुनने वालों के हृदय में एक लालसा का उदय होता है, उस लालसा से भगवान के रूप रस आदि समझ में आने लगता। इसीलिए श्रवण पर जोर दिया गया, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रारंभ में ही एक निश्चित आइडिया नहीं कर लेनी चाहिए कि भगवान का रूप ना।